ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज की। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कुल 155 मामले दर्ज हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आज वोटर बीट्स 2025 संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली के कई क्षेत्रों में कल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी और खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला दक्षिण कोरिया से। भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अब से कुछ देर में ब्राजील से होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम एक स्थायी और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।
श्री मोदी ने विभाग की 150 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक गौरवशाली अध्याय बताया। मौसम वैज्ञानिक डीके चौधरी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इस कार्यक्रम को दूरगामी बताया। उन्होंने कहा कि मिशन मौसम की मदद से भारत के आर्थिक और बुनियादी ढांचे तथा कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के बेहतर आयाम स्थापित होंगे।
भारत सरकार की जो मिशन मौसम है, ये एक दूरगामी कार्यक्रम है जिसके तहत भारत को जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कृषि हो या आप डिजास्टर मैनेजमेंट हो, उसको बेहतर से बेहतर ढंग से कम डिजास्टर के साथ यानी डैमेज के साथ और उसको ज्यादा रिजिलियंट बनाया जाए और बेहतर से बेहतर विकास के आयाम को स्थापित किया जाए।
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। आतिशी के खिलाफ कल कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो में राजनीतिक उद्देश्य के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। इस बीच भाजपा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री आतिशी की आलोचना की है। संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आतिशी से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में 155 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने राजधानी के विभिन्न जिलों में छापेमारी की। इस दौरान 16,000 लीटर से अधिक शराब, 12 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ, 1 करोड़ से अधिक की नकदी और 37 किलो चांदी जब्त की गई। पुलिस ने बताया है कि निवारक कार्रवाई और आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली स्कूल बम धमकी मामले में एक गैर सरकारी संगठन के संपर्क आम आदमी पार्टी से होने पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक छात्र को गिरफ्तार किया है जिसका परिवार इस गैर सरकारी संगठन से जुड़ा हुआ है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए।
आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे, ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है? आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में।
वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा स्कूली बच्चों को धमकी मिलने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त मधुप तिवारी ने कहा है कि पुलिस इस मुद्दे के पीछे राजनीतिक मंशा की जांच कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन पर चुनाव प्रचार के दौरान झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और झूठे वादे करते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी एक दूसरे के पूरक हैं।
जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलने का और खटाखट करने का काम करते हैं और हर राज्य की जनता इनको नकार रही है। और कल दिल्ली में भी जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की निंदा की। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केवल राजनीतिक कारणों से दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर अपने कर्तव्य पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि श्री केजरीवाल पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यों का श्रेय ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आज वोटर बीट्स 2025 संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आर एलिस वाज ने कहा कि युवा मतदाता लोकतंत्र के भविष्य को आकार देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से आयोग युवाओं को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर खास रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। पेश है इस श्रृंखला में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान की एक रिपोर्ट।
राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर पिछले कई चुनावों से आम आदमी पार्टी जीतते आ रही है। वर्तमान विधायक दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से एक बार फिर यहां से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने इस सीट पर उमंग बजाज को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से विनीत यादव चुनावी रण में हैं। साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की थी, तब से लगातार इस सीट पर इस पार्टी का कब्जा है। 157,000 से अधिक मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में 86,000 से अधिक पुरुष और लगभग 70,000 महिला मतदाता हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े कोचिंग संस्थानों से घिरे इस विधानसभा क्षेत्र में देश के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आकर रहते हैं। पिछले साल जुलाई महीने में एक निजी कोचिंग सेंटर के पुस्तकालय में जल जमाव से 3 छात्रों की मौत ने इस क्षेत्र में जल निकासी की समस्या की कलाई खोल दी थी। अनियमित जलापूर्ति, खराब सड़कें, जाम और सीवर की समस्या से इस इलाके के लोगों को आए दिन दो चार होना पड़ता है। इस चुनाव में सबकी नजर इस पर है कि क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर इस सीट पर जीत हासिल करती है या भाजपा और कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के वार्षिक कार्यक्रम के कारण कल आदर्श नगर, मॉडल टाउन, आरपी बाग, संगम पार्क, मलिकपुर गांव, प्रेम कुंज और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है। लोग पानी के टैंकर के लिए 1916 011 27 68 01577188 और 01127619244 नंबरों पर जल बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के स्थापना की सराहना करते हुए कहा कि बोर्ड हल्दी उत्पादन में नवाचार, वैश्विक संवर्धन और मूल्य वर्धन के बेहतर अवसर सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इसके पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। खो खो विश्व कप 2025 में आज भारतीय महिला टीम का अपने पहले मैच में सामना दक्षिण कोरिया से हो रहा है। प्रियंका इंगले की अगुवाई में टीम ने अभियान की शुरुआत की, वहीं भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अब से कुछ देर में ब्राजील से होगा। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक कपिल के पास, जो इस समय नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद है। अभिषेक
जी, सर,
हाँ, क्या मुकाबला जारी है या पूरा हो चुका है?
नहीं, भारतीय महिला खो खो टीम और साउथ कोरिया के बीच मुकाबला अभी भी जारी है। और मुकाबले की अगर मैं आपको खास बात बताऊं, दर्शकों में बहुत उत्साह है और भारत का स्कोर जो स्कोर कार्ड पे इस टाइम है वो है 141 और जबकि साउथ कोरिया का स्कोर सिर्फ 18 अंक है, जो एक बहुत 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 बड़ी बढ़त है।
हाँ, ऐसा है, महिला टीम दक्षिण कोरियाई टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन कर रही है?
हाँ, तो दक्षिण कोरिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम काफी स्ट्रॉन्ग है और उनके खिलाफ उनका काफी अच्छा वो स्कोर कार्ड है। मैच अभी भी जारी है, दर्शकों में बहुत उत्साह है।
और अभिषेक, अब से कुछ देर में भारतीय पुरुष टीम का भी मुकाबला होने वाला है। पुरुष टीम के सामने ब्राजील की टीम है। कल भारत ने अपने पहले मुकाबले में नेपाल के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की थी, तो क्या आज भी पुरुष टीम की ओर से वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिल सकता है?
जी अतर, जैसा मैं आपको बताऊं कि भारतीय पुरुष टीम ने कल जो अपने कैंपेन की शुरुआत की वो जीत के साथ की, लेकिन जो कल का मुकाबला था वो काफी कांटे का टक्कर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के कप्तान जिनका वाइकर ने भी कहा था कि वो अच्छा करेंगे और अपनी इन चीजों से सीखेंगे, तो शायद इस बार भारत मतलब ब्राजील के सामने थोड़ा स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो उनके पास मनोबल है।
जी हाँ, इस जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम को नेपाल, भूटान, पेरू और ब्राजील के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। वहीं भारतीय महिला टीम भी मलेशिया, ईरान और दक्षिण कोरिया के साथ ग्रुप ए में शामिल है। ग्रुप स्टेज मैचों के बाद 17 जनवरी को क्वार्टर फाइनल, 18 जनवरी को सेमीफाइनल और 19 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल होने वाली UG से नेट परीक्षा दिसंबर 2024 स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा कि उसे 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के कारण परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। एजेंसी ने कहा है कि 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज दोपहर धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज की। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कुल 155 मामले दर्ज हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आज वोटर बीट्स 2025 संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली के कई क्षेत्रों में कल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।